Hi, welcome to another episode of Truth Be Told. Today I have with me a very dynamic, a very popular and a very controversial leader of the Patidars. Hardik, welcome to my show. देश को आपके आपके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में मालूम है, कहले आपके क्रिकेट के बारे में मालूम नहीं है, मुझे आपके क्रिकेट के बारे में जानना है।
अंडर 19 खेला हूँ बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से, महसाणा डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर था। वक्त गुजरता गया, गांव के लोग थे, किसान ही कौम से आते हैं, शहर में पापा ने एजुकेशन के लिए ले गए। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और कहीं ना कहीं मैंने देखा जिस स्थिति को कि लोग क्या मुझे जानते हैं, लोग क्या मुझे समझते हैं या लोग क्या मुझे जानने का प्रयास करते हैं, वो मेरे लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरा बड़ा मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि जिस परिवार से मैं आया हूँ उस परिवार में मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं जहाँ पर सत्य बोलना और अन्याय के खिलाफ लड़ना वो मेरा मूल अधिकार है, बस इसी के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन क्या करें, सब जगह भ्रष्टाचार ही इतना है, वहाँ भी इतना ही देखने को मिला। बाद में क्रिकेट को छोड़ना पड़ा, बस क्रिकेट से बाहर निकला, कॉलेज को ख़त्म किया, बस ये सब चलता गया और आज आप सब देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ।
हार्दिक जी, आपके पिताजी भरत भाई, ही वॉज सपोज टू बी, वो एक बीजेपी के वर्कर थे, इज इट ट्रू?
मेरे पापा कम से कम 25-30 साल तक बीजेपी के एक स्ट्रॉन्ग वर्कर के तौर पे काम किया है। लगभग 1997 में मेरे पापा की गाड़ी, उस टाइम जीप आती थी, पुरानी जीपें, उस गाड़ी में यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, वो पहली बार वहाँ चुनाव लड़ने गए थे, तो मेरे पापा की गाड़ी में उन्होंने चुनाव लड़ा था। मेरे पापा को कम से कम 10 साल तक आनंदीबेन पटेल ने जो राखी बोलते, वो राखी भी भिजवाती थी, चुनाव के टाइम हो या चुनाव के बाद, हर राखी के त्योहारों में। पापा बीजेपी वर्कर थे, लेकिन कौन सी बीजेपी पार्टी में, वो बीजेपी पार्टी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, वो बीजेपी पार्टी थी डॉक्टर ए के पटेल, केशुभाई पटेल, और वो पार्टी लोगों की बात करती थी, किसानों की बात करती थी। अभी की बीजेपी पार्टी में वो नहीं, क्योंकि अभी गुंडों की पार्टी है और अभी की जो पार्टी है वो व्यापारियों की पार्टी है, जो किसानों की नहीं।
तो हार्दिक, अगर मैं ये बोलूं कि आपको बीजेपी से नहीं पर मोदी और अमित शाह से प्रॉब्लम है, तो मैं सही हूँ?
लोग बोलते ही ये बात, उसका जवाब मेरा ये होता है, मैं क्यों उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, क्योंकि आज वो एक पार्टी के हिस्सेदार है, मतलब पार्टी का आज मुखिया है, मैं उनका विरोध क्यों कर रहा हूँ कि जो मूल अधिकार जनता का होना चाहिए वो अधिकार लोगों को नहीं दिया जाता। गुंडागर्दी शासन, तानाशाह शासन वाला पूरा इश्यू चला रहे हैं, बस उसी के खिलाफ मेरी आवाज़ है। मैं विरोध करता हूँ, दम लगा कर करता हूँ, छाती ठोक कर करता हूँ कि गलत है तो उनका विरोध करना चाहिए। और दूसरी बात कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मैं राजनेता बनना चाहता हूँ, मैं सिर्फ लीडर बनना चाहता हूँ जनता का, और मैं जनता को देना चाहता हूँ, जनता से लेने के लिए कुछ नहीं आया।
आपके जो आंदोलन के पहले, ये कहा जाता है कि आपके बहन का एडमिशन को लेकर के जो है आपने, आपके आपके मन में पहली बार ये विचार आया कि भाई ये आंदोलन करना चाहिए, ये इसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
देखो, 2012-13 में मेरी बहन को 12वीं कक्षा में कम से कम पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहला नंबर था, और एक गर्ल्स को, एक लड़की को जब इतने अच्छे मार्क्स आते,
मोनिका
इज माई सिस्टर नेम, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में बैठे उन लोगों को उस लड़की को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और उसको आगे ले जाना चाहिए। लेकिन मेरी बहन की ही साथी दोस्त थी, उसको 60% मार्क आते हैं, तो उसको 2 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है, मेरी बहन को सिर्फ 17,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, और वो 17,000 की स्कॉलरशिप 9 तारीख को दी गई, 17,000 की स्कॉलरशिप 9 तारीख को दी गई, और उसके अंदर लास्ट डेट थी 11 तारीख। और बस स्वाभाविक है, एक 18 साल से भी कम उम्र की बच्ची का बैंक अकाउंट नहीं होता। मेरे पापा गए बैंक में, कहा कि 17,000 की स्कॉलरशिप है, ये करना है, बैंक वाला बोला नहीं हो सकता क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं है, खुलवाना है तो कि नहीं खुल सकता, 4-5-10 दिन लगते हैं उसके अंदर। पापा वो 17,000 की स्कॉलरशिप को रिन्यू करवाने के लिए कम से कम 10 बार सचिवालय के धक्के खा चुके, वो गए वहाँ पर, कहा चेंज करो, तब जाके वो 17,000 की स्कॉलरशिप रिन्यू हो गई। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा देश स्वतंत्र है और यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए स्वतंत्रता सत्ता को दी गई है कि आपको ये करना है। लेकिन वहाँ पर ये सारा इश्यू हुआ, मुझे लगा कि ऐसे अच्छी समझदार और इतनी टैलेंटेड लड़की को जब 17,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, वो 17,000 की नहीं लेकिन 17 लाख की होनी चाहिए, और इसी के बाद ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ कि एक लड़की के साथ ये होता है, वो भी एक मेरे परिवार की। पूरे प्रदेश में बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं कि इतने होशियार हो और इतने टैलेंट होने के बावजूद भी सरकार है, चाहे कोई भी हो, भाजपा कांग्रेस कोई भी हो, वो उनको पूरा सहयोग नहीं देता, बस उसी के लिए लड़ाई के लिए बाहर निकले हैं। आज देखो, एक मोनिका की लड़ाई थी नहीं, आज प्रदेश के करोड़ों लोगों की ये लड़ाई बन चुकी है। ये कोई भरत भाई पटेल की बेटे की लड़ाई नहीं थी, बहुत सारे किसानों के बेटे की लड़ाई थी, बहुत सारे किसानों की लड़ाई थी। ऐसे गुड, आज अच्छा हो रहा है।
मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है जो नेशनली रेलेवेंट है, क्या आपका लड़ाई रिजर्वेशन के लिए है?
रिजर्वेशन सिर्फ एक मुद्दा है, लड़ाई तो सिस्टम के सामने है। आज बार बार ये शब्द बोला जाता है, क्यों रिजर्वेशन मांगते हो, रिजर्वेशन नहीं मांगना चाहिए, अपने मेरिट पर खड़े हो। बड़ी अच्छी बात है, आप बोलते तो हो मेरिट पर खड़े हो, आपको मालूम है रिजर्वेशन मांगना क्यों पड़ रहा है? आपको यही मालूम है रिजर्वेशन मांग रहा है ये पटेल होकर? भाई हम रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हैं वो तो सवाल करो कभी। आपने हमारी ज़मीनें ले ली, आप हमें फसल के सही दाम नहीं देते, आज मेरी हमारी शिक्षा महंगी हो रही है, आज अगर हमें कोई रोजगार लेना है तो पैसे देने पड़ते, घूस देनी पड़ती है। एक 7 बार की एक नकल पर्ची एक किसान को निकालनी है तो उसके लिए 100 रुपये लगते हैं। आज हम मांग रहे रिजर्वेशन वो हम शौक के नहीं मांग रहे। आप लोगों ने परिस्थिति ऐसी खड़ी कर दी, सिस्टम को इस तरह से भ्रष्टाचार के अंदर डाल दिया है कि आज हमें वो मांगना पड़ा है। मैं रिजर्वेशन बड़ा मुद्दा नहीं मानता। अगर रिजर्वेशन की जगह सिस्टम को सॉल्यूशन निकालो, रिजर्वेशन मांगना बंद कर देंगे।
क्या रिजर्वेशन से इसका हल निकल सकता है? एक दूसरी बात, आपको ये लगता है कि भारतवर्ष का जो यूथ है जो आज आपको फॉलो कर रहा है, उसको आप एक मैसेज ऑफ रिजर्वेशन देना चाहते हैं?
देखो बड़ी बात, एक बात बताओ, रिजर्वेशन सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरे 100 दोस्त थे, 100 दोस्तों में 20 दोस्तों को सिर्फ 60% मार्क्स थे, मेरे 80% दोस्तों को 80% मार्क्स थे, तो वाई उन 60% बच्चे जो 60% मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन क्यों मिल गया? रिजर्वेशन को क्या भीख मांगते हो लोग? भीख है रिजर्वेशन मतलब भीख? अरे नहीं है, रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व है। जो हमारा संविधान कहता है रिजर्वेशन का मतलब प्रतिनिधित्व होता है, चाहे वो संसाधन हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे रोजगार हो, चाहे किसी भी जगह पर हो, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, रिजर्वेशन का मतलब प्रतिनिधित्व होता है। और वो प्रतिनिधित्व साहूजी महाराज के वक्त से आज तक चलता आया। हम लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान नहीं चाहते। रिजर्वेशन 100% होना चाहिए और मैं मानता हूँ सभी समाज के लिए होना चाहिए, सभी समाज को सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात का, जो यूथ आपसे जुड़ा है, मैं सभी यूथ की ये बात करूँगा, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि रिजर्वेशन गलत है या रिजर्वेशन सही है, हमें इन दोनों जगह को समझना पड़ेगा। रिजर्वेशन क्यों सही है? क्योंकि आज भी आदिवासी और दलित बच्चे गरीब हैं, आज भी उनके लिए अच्छी शिक्षा मौजूद नहीं है। और क्यों विरोध कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी किसी कम बच्चे के, कम मार्क्स होने वाले बच्चों को एडमिशन मिल जाता है।
हार्दिक, तो मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या हार्दिक पटेल खुश होगा अगर रिजर्वेशन इंडिया से कम्प्लीटली निकाल दिया गया, हर एक तबके के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए अगर रिजर्वेशन कम्प्लीटली निकाल दिया तो क्या हार्दिक पटेल खुश होगा?
जिसकी जितनी जाति, जिसकी जितनी संख्या, उसको इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो रिजर्वेशन के तहत दर दो या रिजर्वेशन के तहत ना दो, गुजरात या देश के अंदर जितनी भी जाति है उसको उतने जाति के आधार पर पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल भी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं 100% रिजर्वेशन के समर्थन में हूँ। सभी को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, जिसकी जितनी जाति, जिसकी जितनी जनसंख्या, उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए।
हार्दिक, मैं लास्ट क्वेश्चन आपको ये एक सेक्शन में पूछना चाहता हूँ कि आपके क्रिकेट में, जो आप इतने अच्छे से खेलते थे, आपके क्रिकेट में भी क्या आप रिजर्वेशन की मांग करोगे?
तो ऐसे तो कल कोई भी बोलेगा कि आप आर्मी में रिजर्वेशन की बात करोगे,
बिल्कुल,
या आप अपनी सोसाइटी में रिजर्वेशन की बात,
बिल्कुल।
हमारा संविधान ये कहता है, हमारा संविधान कहाँ कहाँ कहता है? हमें संविधान में लिखा है क्रिकेट में भी रिजर्वेशन चाहिए? नहीं लिखा वहाँ पर। हमारा संविधान कहता है कि शिक्षण के आधार पर, रोजगार के आधार पर, वहाँ वहाँ शैक्षणिक और सामाजिक प्रछात के, सामाजिक कल्याण के आधार पर रिजर्वेशन की बात हुई तो उसका पूरा समर्थन है मेरा।
आपको लगता है रिजर्वेशन से ये सिस्टम और प्रोग्रेस होगा?
करप्ट कौन कर रहा है? नेता बैठे लोग, और नेता तो वहाँ तो रिजर्वेशन है ही नहीं, वहाँ तो सब खुले, सब लोग आओ, सब चुनाव लड़ लो, सब जीत जाओ और विधानसभा या लोकसभा में बैठ जाओ। देखो मैं एक क्लियर बात बताता हूँ, रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में है ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में है, जहाँ डाइवर्सिटी हम कहते हैं, ब्लैक, एशियन, अमेरिकन या अफ्रीकन वगैरह वगैरह। रिजर्वेशन हमें यहाँ रखना है, लेकिन कैसे? तो बार बार एक शब्द कहा जाता है कि समीक्षा होनी चाहिए। हम 60 साल से रिजर्वेशन दे रहे हैं आदिवासी समाज को और दलित समाज को, क्या हम उनका विकास कर पाए? नहीं किया तो हमारी रिजर्वेशन देने में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। हमें कैसे देना है कि रिजर्वेशन देना है तो उनके विकास के लिए देना है, उसका दुरुपयोग के लिए नहीं। अगर किसी एक व्यक्ति रिजर्वेशन से अपना पूरा जीवन निर्वाह अच्छी तरह से कर सकता है और कोई गरीब रहता है उसी समाज का, तो मैं मानता हूँ उस व्यक्ति के लिए रिजर्वेशन का सही उपयोग होना चाहिए। बस मैं इतना कहता हूँ कि रिजर्वेशन का सही उपयोग और सही विकास होना चाहिए।
बिल्कुल, ये बात से मैं भी सहमत हूँ। 1947 से 2017 तक रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया गया, इंडिया में रिजर्वेशन दिया गया, मोस्ट ऑफ द सेक्टर में रिजर्वेशन 100% यूटिलाइज भी हुआ गया। कोई कोई सेक्टर है जिधर रिजर्वेशन यूटिलाइज नहीं गया, ठीक है। पर क्या दलितों का, क्या जो जिसको रिजर्वेशन आज हम देते हैं, दलित या पिछड़ा समाज, क्या इनका उद्धार हुआ है, क्या इनका प्रोग्रेस हुआ है?
मैं वही तो बात की ना अभी, करेक्ट, कि नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें समीक्षा करनी पड़ेगी कि हम पिछले 60 साल हो गए, देश हमारा आजाद 70 साल हो गए, हम दे रहे फिर भी हम उनका विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमें यही सोचने की बात है, हमें यही समझने की बात है, और वो मुझे और आपको नहीं ये करना, वो सत्ता में बैठे लोग करेंगे। कि उसको ये समझने की ज़रूरत है कि आज भी जंगल के अंदर आदिवासी रह रहा है, क्या हम रिजर्वेशन से उनका विकास नहीं कर पा रहे हैं? दलित को आज हम अत्याचार कर रहे हैं, आज उस पर क्यों कर रहे हैं? हम उसका विकास करना चाहिए, समान अवसर सबको मिलना चाहिए, समान वेतन सबको मिलना चाहिए, समान अधिकार सबको मिलना चाहिए, तभी तो जाकर गर्व से कह सकेंगे कि मेरा भारत महान।
हार्दिक, लेट्स गेट टू पॉलिटिक्स। आप शिवसेना के बहुत क्लोज थे, एक वक्त पे ऐसा रूमर था कि सही था ये आप बताएंगे, कि आप शिवसेना को सपोर्ट करने वाले थे गुजरात इलेक्शन में, फिर वो मूव हुआ कांग्रेस की तरफ, ये मूवमेंट क्यों हुआ?
देखो, पहली बात कि आज इसराइल के यहाँ पर प्रेसिडेंट आए हैं, पता नहीं कहीं रास्ते में अगर हमारी एक दूसरे से मिलना होता है तो क्या कल मेरे इसराइल के लिए प्रचार करूँगा। आदित्य अच्छा मेरा दोस्त है, तो एक दोस्त और पारिवारिक नाते से मेरे संबंध वहाँ पर है। मैं बाला साहब ठाकरे को मेरा आइडल मानता हूँ, उनकी बात पर, उनकी एटीट्यूड पर, उनके काम करने के तरीके से, तो मुझे ज़रूरी लगा कि मुझे उद्धव जी से और आदित्य से मिलना चाहिए। और ऐसे भी मैं बाला साहब ठाकरे का फैन हूँ तो मैं उनको नहीं मिल पाया, तो बिल्कुल मुझे मातोश्री जाकर उनकी प्रतिमा पर हार लगाना, मतलब फूल चढ़ाने चाहिए, मैंने वो किया। हमको मालूम, मैं नीतीश कुमार के भी साथ था, मैं ममता दीदी के भी साथ हूँ, मैं उमर अब्दुल्ला जी के भी बेटे के साथ भी हूँ, मैं तो सभी के साथ हूँ, मेरी सभी से मित्रता होनी चाहिए। और मेरा तो काम ही यही कि 23 साल का बच्चा हूँ मैं, तो सभी का बेटे की उम्र का हूँ, तो मुझे सबसे मिलना चाहिए और पूरे देश की राजनीति को समझना चाहिए, तब जाके मैं 25 साल की राजनीति लोगों के लिए अच्छा कर पाऊँगा। बिल्कुल सबको मिल रहा हूँ और सबको इसीलिए मिलूँगा क्योंकि मुझे हर प्रदेश को समझना।
आपकी दोस्ती शिवसेना से है जो कि एक राइट विंग हिंदुत्व पार्टी माना जाता है, आपकी दोस्ती डॉक्टर तोगड़े जी से है जो कि एक हार्ड कोर हिंदुत्व के प्रतीक है, आपकी साजगाज कांग्रेस के साथ है, तो आपने एक ऐसा समीकरण लेके आया इंडिया में जो कि एक्चुअली इंडिया का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको एक चेंज ला रहा है। और मुझे लगता है कि आप इसमें एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे हो, ये शायद आपको भी दिल ही दिल में मालूम है, आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हो।
मेरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं इन लोगों की दोगली नीति के कारण पीछे नहीं डूब रहा है। आज मेरा देश कहाँ पर है? कौन सा युद्ध गर्व से कहता है कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ? कौन सा किसान कहता है कि मैं यहाँ पर किसानी कर रहा हूँ और मुझे मेरी फसल के सही दाम मिल रहे हैं, मैं खुश हूँ, मैं अपनी बेटी का विवाह इस साल अच्छी तरह से कर पाऊँगा? कौन कह रहा है? जो व्यक्ति FDI का विरोध कर रहा था, 100% FDI ला रहा है। जो व्यक्ति कह रहा था कि स्वदेशी अपना, आज वो विदेश में घूम रहा है। जो व्यक्ति कह रहा था कि मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया चाहिए, आज खुद वो मेक इन इंडिया लेकर आ गया है। बस यही इस बात का, दोगली नीति नहीं, सब साथ मिलो, सब साथ मिलकर रहो।
हार्दिक, एक सेकंड मैं आपको इधर रोकना चाहता हूँ। तो क्या आप ये बता रहे हैं कि एक मोदी सरकार, लेट अस टेक नेम्स, मोदी सरकार के अगेंस्ट एक ऑपोजिशन नहीं था आज तक, उनको ऑपोजिशन था ही नहीं, कोई क्लियर ऑपोजिशन लीडर नहीं आया, गुजरात इलेक्शन के बाद एक क्लियर ऑपोजिशन दिख रहा है और वो ऑपोजिशन को बनाने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। हार्दिक, मेरा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, क्या आप एक राइट लेफ्ट सेंट्रिस्ट सब मिलकर एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का गठन का आप निर्माण करने का कोशिश कर रहे हो?
सुबह चाय पीने बैठा था और देखा कब टूटा हुआ है, तो बिल्कुल चाय नहीं पी पाता था मैं, क्योंकि कप टूटा हुआ क्या करो, क्योंकि घर में एक ही कप था। ऐसे ही अगर मेरा देश टूटा रहेगा तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि मेरा हिंदुस्तान एक है। आप पार्टी अलग हो सकती है, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात आती है तो सबको एक रखना है। और मैं ये लेफ्ट राइट अपर नीचे सबको एकजुट करके, और 99 बेईमान नहीं चाहिए मुझे, 100 में से 1 बेईमान होगा और बाद में मैं कहूँगा मेरा भारत महान। अभी 100 में से 99 बेईमान है फिर भी कहना पड़ रहा है मेरा भारत महान। आज देखो ताजमहल पूरा विश्व देखने आता है और हम यहाँ कहते हैं कि ताज एक गुलाम की निशानी है। देखने के बाद ताज गुलाम की निशानी कहते और विदेशियों को ताज दिखाते हो। बस ये जो दोगली नीति है उसको चेंज करना पड़ेगा।
डॉक्टर तोकड़े जी ने हमारे चैनल पे एक बात बोली थी, वो उन्होंने एक्चुअली हमने उनको पूछा था कि अगर कांग्रेस हिंदुत्व की बात करता है, अगर कांग्रेस हिंदू इंटरेस्ट की बात करता है तो क्या वो सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने कैटेगोरिकली हमारे चैनल में बोला था जो हिंदू की बात करेगा उसको सपोर्ट करेगा। हार्दिक माई क्वेश्चन इज, क्या तोगाड़िया जी डिड ही सपोर्ट द कांग्रेस हार्दिक अल्पेश जिग्नेश मूवमेंट इन गुजरात?
बीजेपी के राज में VHP नेता रो रहे हैं, उससे तो बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती।
बिल्कुल। सो डिड ही सपोर्ट हार्दिक, वन क्वेश्चन आई वुड लाइक अ ट्रूथ आंसर, डिड डॉक्टर तोगाड़िया सपोर्ट द कांग्रेस हार्दिक अल्पेश?
हम सब साथ ही है, अच्छे काम में साथ है। मैं जनता को कुछ नहीं देना चाहता, जनता मुझे कहेगी ये हमें चाहिए वो तुम ला कर दो, बस वो काम करने के लिए दौड़ रहा हूँ।
अगर जनता ने हिंदुत्व मांगा तो आप हिंदुत्व दोगे?
हिंदुस्तान की जनता कहती है हमें समानता चाहिए, हमें सद्भावना चाहिए, हमें राम भी चाहिए, हमें रहीम भी चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए, हमें प्यार मोहब्बत सब कुछ चाहिए।
पर तोगड़े जी ये नहीं कहते,
तोगड़िया जी अकेला बोलते हैं तो कोई पूरा हिंदुस्तान नहीं बोलता। अगर कोई मुसलमान अकेला बोलता है तो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं बोलता।
पर आप तोगड़े जी को सपोर्ट करते हैं और तोगड़े जी आपको सपोर्ट करते हैं।
कल जाकर कोई मुसलमान संगठन के लीडर के साथ ये हुआ तो वहीं पर भी मैं मिलने जाता और मेरी जिम्मेवारी बनती है एक सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर कि मुझे सबको मिलना चाहिए।
हार्दिक, आप आर यू कंटिन्यूइंग टू बी अ सोशल एक्टिविस्ट?
मैंने क्लियर कहा, आप समझे नहीं मेरी बात को। मैंने स्प्ले करके कह दिया है कि मुझे अभिमान के साथ कहना है मुझे लीडर बनना है। लोग कहते मुझे पॉलिटिशियन नहीं बनना, अच्छी बात है, मुझे लीडर बनना है।
मतलब आप इलेक्शन लड़ोगे?
देखो मेरी उम्र नहीं
है। करेक्ट, 2019 में आपका
तब जाके देखा जाएगा, किसको मालूम क्या होने वाला आजकल।
बहुत बढ़िया, मतलब आप उसको ये डोर को ओपन रख रहे हो।
नहीं, अब ओपन नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैंने क्लियर कहा मुझे लीडर बनना है। लीडर किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन मुझे जनता का लीडर बनना।
पॉलिटिशियन भी हो सकता है?
पॉलिटिशियन नहीं हो सकता,
भी हो सकता है, मतलब
राजनेता
भी हो सकता है।
राजनेता ओनली फॉर लीडर।
हार्दिक, अगर आपको एक पार्टी बनाना हो, एक पार्टी अगर आपको बनाना हो तो आपके पार्टी का कोर आइडियोलॉजी क्या होगा?
देखो मैंने ऐसा सोचा नहीं पार्टी बनाना, लेकिन
करेक्ट, मैं
अगर ये होता है तो मेरे सिर्फ दो ही चीजों से करूंगा, एक यूथ और किसान। क्योंकि कहते हैं तो बहुत लोग मेरा देश युवाओं का है, बुढ़े बैठे सब युवा को आगे नहीं आने देते। कहते तो बहुत है मेरा देश किसानों का है, किसानों की हरियाली वाला देश है, एक भी किसान की आत्महत्या पर जाकर देखने कोई नेता नहीं गया। किसी को मालूम नहीं हल कैसे चलता है, किसी को मालूम नहीं ट्रैक्टर कैसे चलता है, और वहाँ जाकर लोकसभा में बोलता है मैं किसान का नेता हूँ। नहीं, मुझे नेता अगर कोई किसान का बनना है तो चौधरी चरण सिंह या देवीलाल जी जैसा होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा होना, बस उसी लड़ाई से ये लड़ाई चलती रहेगी।
हार्दिक, ये जो किसानों का प्रॉब्लम है, किसानों का प्रॉब्लम जो है ये कांग्रेस के समय से चला आ रहा है। कांग्रेस ने भी कुछ खास किसानों के लिए किया नहीं है, ये बात अलग है कि शायद बीजेपी ने बिल्कुल नहीं किया हो, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ खास किसानों के लिए किया नहीं है। आप अगर चार चीज गवर्नमेंट को बोलोगे किसानों के बारे में तो वो चार चीज क्या होगी?
देखो एक सच बताऊँ, पहली बात कि किसान और यूथ का जो प्रॉब्लम है वो भगवान ने नहीं दिया कि जाओ ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें श्राप दे दिया। ये प्रॉब्लम तो सरकार के द्वारा क्रिएट हुआ है, ये प्रॉब्लम तो मानव सर्जित पूरा है। इस मुद्दे को मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं, अगर किसानों की बात आती तो किसानों को मूल्य के दाम मिलने चाहिए। 2001 के अंदर जो फसल के दाम मिल रहे थे वो अभी बढ़ने की जगह कम हुए, और 2001 के अंदर जो ईंट कपची रेती के जो भाव थे उससे सीमेंट आज उससे 200 गुना ज़्यादा भी हो गए। तो कहने का मतलब किसान को मूल्य के सही दाम मिलने चाहिए।
हार्दिक, सबसे बड़ा चीज़ देश में कम्युनल पोलराइजेशन किया है, और ये शायद इसकी खामियाजा हम आज भी और आगे भी शायद भुगतेंगे। बट हार्दिक, एक चीज़ हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज जो हो रहा है वो कास्टस पोलराइजेशन हो रहा है। ओबीसी, दलित, अदर बैकवर्ड क्लास, नोमैडिक ट्राइब, ये पाटीदार, गुज्जर,
आप जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या वो समझने पड़ेगी। आज गांवों के अंदर इन्हीं भाजपा वालों ने समाजों को बांटने का बड़ा काम किया। पटेलों के अंदर दो दो जात को लड़ा दिया, सरपंच के चुनावों में भी ये बात करते हैं, दलितों में भी यही हुआ। मोदी जी ने पूरे 15 साल यहाँ पर राज किया, सिर्फ यही किया है। आज